अयांश को हंसता देख विनित की आंखें खुशी से फैल गई और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आज पहली बार विनित वजह बना, या कहीं उसकी कही बात, जिस पर अयांश हंस रहा था। अयांश ने अपना एक हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखा हुआ था तो दूसरा अपनी पेट पर। जिस तरह उसकी हंसी उस वक्त गाड़ी में गूंज रही थी, साफ पता चल रहा था देखकर। उसका यूं जोर से खिलखिलाकर हंसना, पेट दुख जाए हंसते हंसते, ऐसी हंसी थी। अयांश को यूं देख विनित की आंखें नम हो गईं। जो कभी हंसते हुए विनित को देख रहा था तो कभी सीट के सहारे टिकाकर हंस रहा था और साथ साथ बोल रहा था, मैं आर्या, रामसिया, तुम लक्ष्मण और वो मिस रायचंद शूर्पणखा। इतना बोल अयांश का हंसना और बढ़ गया। ये देख विनित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराते हुए एक टक अयांश को देखे जा रहा था। तभी अयांश ने उसके बहते आंसू देख खुद की हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की तो विनित अपने आंसू पोंछते तपाक से बोला, ये तो मैं पोंछ लूंगा, तुम हंसते रहो। सच में बहुत अच्छे लगते हो अयांश तुम हंसते हुए। हाँ, मैं लक्ष्मण हूँ, अयांश आर्या मेरे रामसिया, रोते हंसते हुए। और वो रिद्धिमा है शूर्पणखा, सच में बीच में घुसने का काम जो करती है। विनित बोल ही रहा था कि तभी देखा अयांश अपनी हंसी रोक चुका है, बस मुस्कुराहट है अब उसके चेहरे पर। विनित उसकी ओर देखते हुए बोला, रोक ली हंसी? अयांश कुछ नहीं बोला, वो सीधा होकर बैठ गया और सामने देखने लगा। तभी विनित ने अपना सीट बेल्ट खोला और फट से आगे बढ़कर अयांश के गले लग गया। ये देख अयांश पीछे हट गया। एक पल तो उसने अपनी आंखें मूंद ली, पर दूसरे ही पल विनित को कंधों से पकड़ खुद से दूर कर दिया। क्या है ये, गाड़ी में ऐसा कौन करता है, चुपचाप अपनी जगह बैठो। इतना कह अयांश ने गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। कुछ नहीं है, थोड़ा प्यार आ गया था अपनी जाने मन पर, बट तुमको क्या, गर्दन झटकाते हुए, तुमको तो बस डांटना ही होता है, प्यार तो तुम करते नहीं मुझसे, दोस्त हूँ फिर भी इतना सा प्यार नहीं, जब देखो डांटना गुस्सा, मुंह बनाते हुए, मुझे बात ही नहीं करनी। कहते हुए विनित अपनी सीट पर सही से बैठा और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी से बाहर देखने लगा। ये देख अयांश नामे सिर हिलाता है। गाड़ी में खामोशी पसर चुकी थी। अयांश आराम से ड्राइव कर रहा था और विनित पिछले 15 मिनट से चुप था। हालांकि ऐसा होता नहीं था कि विनित चुप रहे, जो डांटने पर भी चुप ना हो, आज वो बिल्कुल खामोश बैठा था और इसके चलते अयांश का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। तभी अयांश ने कोट से अपना फोन निकाला, उसमें कुछ खर्च कर अपने फोन को गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, जिससे फोन में बज रहा गाना गाड़ी में बजने लगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, गाने के बोल सुनते ही विनित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फट से अयांश की ओर देखा तो अयांश उसे अंगुली दिखाते हुए बोला, दूर रहना मुझसे। हाँ हाँ, दूरी हूँ, दोनों के बीच की दूरी की तरफ इशारा करते हुए, लव यू जाने मन, बोल विनित ने मुस्कुराते हुए गाने की वॉल्यूम बढ़ा दी और साथ साथ खुद भी गाने लगा। उसे बैठे बैठे गाते नाचते हंसते मुस्कुराते देख अयांश के होठों पर भी स्माइल आ गई। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। तभी विनित ने खुश होते अयांश के सामने हाथ कर दिया। ये देख अयांश ने एक नज़र उसे देख अपना हाथ विनित के हाथ में रखा ही नहीं, बल्कि उस पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर दी और सामने देखते हुए खुद भी गाने लगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, विनित की ओर एक नज़र देखते हुए। तभी विनित ने अयांश को सल्यूट करते हुए अगली लाइन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए ज़ोर से गुनगुना दी। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आर्या ने जीवन ज्योति आश्रम के बाहर गाड़ी रोकी। गाड़ी का शीशा नीचे कर आर्या ने मुस्कुराते हुए आश्रम की तरफ देखा। बर्थडे हो हमारा और हम यहाँ ना आए, ये तो होने से रहा। चलो आर्या चतुर्वेदी, आज के दिन को और भी ज्यादा खास बनाने का वक्त आ गया है। इतना कह आर्या गाड़ी से बाहर निकली। आर्या ने व्हाइट स्लीवलेस सिंपल सा गाउन पहना हुआ था, जो ज्यादा हैवी तो नहीं बट बहुत प्रिटी था, जिसमें आर्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कर्ली बाल, लाइट मेकअप, एक हाथ में वॉच, दूसरे में गोल्डन ब्रेसलेट, उसी से मैचिंग गले में गोल्ड की चेन और छोटे छोटे गोल्ड के इयररिंग्स, जो उसके लुक में 4 चांद लगा रहे थे। ऊपर से उसकी स्माइल, जिसके चलते कहीं कोई कमी नहीं लग रही थी। आर्या ने गाड़ी से उतरते ही पीछे की सीट से बड़ा सा बॉक्स निकाला और साथ में 3-4 बैग्स भी। फिर वो उनको संभालते हुए आश्रम की तरफ बढ़ गई। आर्या आश्रम के गेट पर पहुंची ही कि वहां के गार्ड उम्र 60 की नजर आर्या पर पड़ी। आर्या बिटिया, मुस्कुराते हुए, और वो तेजी से चलते आर्या के पास आया। पास आते ही उसने आर्या के हाथ से बैग्स पकड़ लिए। आर्या बिटिया, आवाज देनी चाहिए ना, अकेले सब कुछ उठाकर लाना जरूरी तो नहीं। बैग्स अपने हाथ से जाते ही आर्या ने आ भरी और बॉक्स सही से पकड़कर हंसते हुए बोली, कहां अकेली उठाकर लाई हूं मुरली काका, आधा आपने ले तो लिया। ये देख मुरली काका मुस्कुरा दिए, हाँ वो तो दिख गई तुम, वरना अकेली ही करती। इतना कह मुरली काका ने आर्या के सिर पर हाथ रखा। जन्मदिन मुबारक हो आर्या बिटिया। थैंक यू मुरली काका, वैसे आपको याद था हमारा जन्मदिन है आज, या हमें देखकर आपको याद आया है, आर्या गौर से उनकी ओर देखते हुए बोली। मुरली काका अपनी गार्ड वाली वर्दी की तरफ इशारा करते हुए, 5 साल हो गए आर्या बिटिया, ये वर्दी अब रोज थोड़ी पहनता हूँ, मेरी जगह अब ड्यूटी भी तो मेरा बेटा करता है, आज ये वर्दी पहनी है और अपने बेटे को मनाकर खुद आया हूँ ड्यूटी करने। कह दिया तुम जाओ ना जाओ, मैं तो आज जरूर जाऊंगा, हंसते हुए, हमारी आर्या बिटिया आने वाली है जिसका आज जन्मदिन है। आर्या मुस्कुराते हुए, ओह तो ये बात है। मुरली काका, हाँ तो यही बात है, सिर्फ तुम ही यहाँ आने के लिए बेताब नहीं रहती हो आर्या बिटिया, हम आश्रम में रहने वाला हर शख्स को भी इंतजार रहता है तुम्हारे आने का। वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम कब आती हो कब जाती हो, पर हाँ तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम यहाँ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने जरूर आती हो, ये बात मैं कभी नहीं भूलता, और भला ये मौका कैसे छोड़ दूं अपनी इस शैतान पुड़िया से मिलने के लिए, आर्या का गाल थपथपाते हुए। ये सुन आर्या हंसती, पुड़िया क्या होती है मुरली काका, गुड़िया बोलो ना, गुड़िया भी हो तुम और पुड़िया भी, ऐसी पुड़िया जिसमें ढेर सारी शैतानियां भरी हुई हैं, एक के बाद एक निकलती ही जाती है, इसीलिए शैतान पुड़िया, मुरली काका बोले और दोनों हंस पड़े। तभी आर्या मासूमियत से, सॉरी मुरली काका, पढ़ाई के चलते वक्त ही ना मिला आने का, और पिछले कई महीनों से हम यहाँ बिल्कुल भी आ ही नहीं पाए, आपसे क्या किसी से भी नहीं मिल पाए, जब से गाजियाबाद से मुंबई रहने लगे हैं हम तब से जब भी वक्त मिलता फट से चले आते थे, पर पिछले 1-2 साल तो ऐसे हो गए मानो वक्त के पंख ही नहीं, वो तो मिस्टर इंडिया बन गया हो, पता ही नहीं चलता वक्त का, फट से फुर। और इस बीच आज के दिन के अलावा जब भी हम यहाँ आए तो बस थोड़ी देर के लिए और जरूरी काम से, बट आपसे मिलने नहीं आ पाए, ना ही किसी के साथ वक्त बिता पाए, बस भैया से ही जाते जाते आपका हालचाल ले लिया, कंधे उचकाते हुए, बाकी हमें पता ही था, मुस्कुराते हुए, बाकी दिन हम सब मिले ना मिले पर आज तक के दिन हमारा सबसे मिलना हो जाएगा और सबका हमसे, इसलिए आज हम बड़ी ही फुर्सत से आए हैं, वक्त ही वक्त है और कोई जल्दी नहीं है। हाँ आज सब मिल लेंगे, सब इंतजार भी कर रहे हैं और सबको पता है आज आर्या चतुर्वेदी आने वाली है, मुरली काका ने आर्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। हमें तो आना ही था ना मुरली काका, आज सिर्फ हमारा जन्मदिन थोड़ी है, आज तो जीवन ज्योति यानी हमारे इस आश्रम का भी तो जन्मदिन है ना, आर्या फट से बोली।
हाँ आज तो खास दिन है, आप भी 25 वर्ष की हो चुकी हैं और इस आश्रम को बने भी 25 साल हो गए बिटिया। आपके पहले जन्मदिन पर आपकी दादी माँ ने, शांति देवी जी ने, आपके माता पिता के नाम पर इस आश्रम का उद्घाटन किया था, मुरली काका ने आश्रम की तरफ देखते हुए कहा। आर्या आश्रम में इधर उधर तरफ देखते हुए, जानते हैं मुरली काका, हमारे दादू का सपना था ये आश्रम, ऐसा आश्रम जिनका कोई नहीं, उनको आश्रय देना ही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देना, हर सुख सुविधा, खुशी, प्यार सब कुछ हो, पर दादू वो सपना हमारे पापा मम्मा को सौंप ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनको विश्वास था कि मेरे पेरेंट्स उनका सपना ज़रूर पूरा करेंगे, और उन्होंने शुरुआत भी की दादू के सपने को सच करने की। हम जिस दिन इस दुनिया में आए उस दिन इस आश्रम की नींव रखी गई थी, मुरली काका बताया है हमें सब कुछ दादी माँ ने, पर वो सपना पूरी तरह साकार हो पाता उससे पहले ही मेरे पेरेंट्स को बप्पा ने अपने पास बुला लिया। 6 महीने के थे हम, सिर्फ 6 महीने के, और उनका एक्सीडेंट, इतना ही कहा आर्या ने, उसकी आंखें नम हो गईं, वो आगे कुछ कहती कि मुरली काका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, आर्या बेटा खुद को संभालो। आर्या ने आंखों के किनारे साफ किए, संभाल ही तो रही हूँ मुरली काका, हम ठीक हैं, मुस्कुराते हुए। दादू के सपने को पूरा करने का पापा ने अपना मकसद बना लिया था, जहाँ मम्मा भी हर कदम पर उनके साथ थे, पर वो मकसद पूरा हुआ फिर दादी माँ के हाथों, जिसमें हमारे प्यारे चाचू ने भी साथ दिया। आखिरकार दादू, पापा, मम्मा तीनों की ख्वाहिश थी ये आश्रम, तो दादी माँ कैसे भला पूरी ना करती। पत्नी और माँ का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है हमारी दादी माँ ने। 6 महीने के अंदर पूरा आश्रम बन गया, और जब हम 1 साल के हुए यानी हमारे पहले जन्मदिन पर दादी माँ ने इस आश्रम का उद्घाटन भी कर दिया और नाम दिया इस आश्रम को जीवन ज्योति, हमारे पापा और मम्मा का नाम। मुरली काका, दादी माँ का प्यार कहें, आशीर्वाद कहें या सबसे प्यारा तोहफा, बहुत खास है ये आश्रम हमारे लिए। जब यहाँ आते हैं तो दादू का आशीर्वाद भी मिल जाता है और हमें हमारे मम्मा पापा। जब भी यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने मम्मा पापा के पास आए हैं, मुस्कुराते हुए। हाँ, वो बात अलग है, यहाँ आकर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं पापा मम्मा फिर ना आएंगे। हम यहाँ पर क्या करें, इस जगह से दूर रह ही नहीं पाते। ये सिर्फ जगह नहीं है, जिंदगी है हमारी, जहाँ हमने अपनों को खोकर भी वापस अपनों को पाया है। ऐसा लगता है मेरा सब है यहाँ, सब क्रमशः।